Recording in progress.
الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون. ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. ومنهم من يستمع إليك، وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها. حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين. وهم ينهون عنه وينأون عنه، وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ربنا زدنا علما. तो आज की एक क्लास शायद हमारी आखिरी क्लास हो, क्योंकि मिडल ईस्ट में आज 29वां रोज़ा है और कल ईद मुतवक्के है। हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। अगरचे के कुछ साइंटिफिक डिटेल्स के मुताबिक जो है वो कल होना मुश्किल है। अगर ईद कल नहीं हुई तो फिर कल भी इंशाल्लाह हमारी क्लास होगी, और अगर हुई तो फिर क्लास मुमकिन नहीं हो सकेगी। तो रमज़ान मुबारक का आखिरी रोज़, आखिरी रोज़ा भी हो सकता है, आखिरी दरस कुरान भी हो सकता है। बहुत सारी बातें कल हो चुकी थी इस बारे में कि इस दरस कुरान को फिर हम आगे भी जारी रखें। जो लोग रमज़ान मुबारक में सुनते रहे हैं तो आगे भी, हफ्ते में सिर्फ 2 दिन होता है, उसको कंटिन्यू करें, और इससे फिर फ़ायदा उठाने के बारे में भी बात हुई थी कि जितना फोकस होगा तो उतना ही जो है वो फ़ायदा होगा, और जितना डिस्ट्रैक्टेड रहेंगे, मुंतशिर मुंतशिर व जहन रहेंगे, तो उतना ही जो है वो नुकसान होगा। अच्छा, ये जो आयात अभी तिलावत की गई, ये हमने अभी शुरू करनी है, क्योंकि कल जो है वो इससे पीछे वाली आयात के मारूफ मसाइल पढ़ के हमने मुकम्मल कर लिए थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन आयात के अंदर फरमाते हैं, जिसका तर्जुमा हज़रत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह के तर्जुमे से मुफ्ती शफ़ी रहमतुल्लाह अलैह ने यहाँ पर मारूफ़ कुरान जिल्द नंबर 6 में नकल फरमाया, तो उसी को हम पढ़ रहे हैं कि वह यौमा के जिस दिन, और जिस दिन नहशुरुहुम जमीअन, हम जमा करेंगे सब के सब, उन सब के सब को। सुम्मा उसके बाद, नकूलु लिल्लदीन अशरकू, हम कहेंगे उन लोगों से जिन्होंने, लिल्लदीना उन लोगों से जिन्होंने, लिल्लदीना का ऐसे तर्जुमा किया जाएगा, अशरकू शिर्क किया। ठीक है, अलग से अगर अशरकू का लफ्ज होता तो उन्होंने, उन सब मर्दों ने शिर्क किया, ये इसका तर्जुमा बनता। ठीक है, लेकिन यहाँ पर सियाक व सबाक के हिसाब से तर्जुमा किया जाएगा, तो वो सारे लोग जिन्होंने शिर्क किया उनसे अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाएंगे। कैसे फरमाएंगे, इसकी कैफियत, इसका हाल हमें नहीं मालूम, कि बराह रास्त फरमाएंगे या फरिश्तों के जरिए से फरमाएंगे, ये इस वक्त हमें पता नहीं है। थुम्मा नकूलु लिल्लज़ीना अशरकू अयना शुरकाउकुम, कहाँ हैं तुम्हारे वो शुरका, तुम्हारे वो पार्टनर्स, तुम्हारे पार्टनर्स से नहीं जो तुम्हारे पार्टनर्स थे, तुम्हारे मददगार थे, बल्कि जिनको तुम अल्लाह के साथ शरीक कहते थे, अल्लाह का शरीक करार दिया करते थे, वो कहाँ हैं, कहाँ चले गए सारे के सारे। अल्लदीना कुंतुम तज़ुमून, के जिनका तुम्हें दावा था, ज़ुम उर्दू में भी कहते हैं ना, ज़ुम बड़ा जो है ना, इसको ज़ोम है अपने ऊपर, यानी अपने बारे में बहुत बड़ा गुमान है इसका। ठीक है, तो इसके लिए ज़ोम का लफ्ज इस्तेमाल होता है। तो उनके किसी और के बारे में ज़ोम, जैसे किसी को अपने बारे में ज़ोम ना हो कि मैं बहुत बड़ा हूं, मैं बहुत आलीशान हूं, बल्कि उसको अपने किसी रिश्तेदार के बारे में ज़ोम हो कि वो बड़ा, बहुत बड़ा है। जैसे छोटा बच्चा जो है उसको अपने ताकत पे तो कोई जोम नहीं होगा, उम्मीद है कि नहीं होगा छोटे बच्चों को, लेकिन उसको अपने अब्बा की ताकत पे बड़ा जोम होता है ना। मेरे अब्बा जो है वो बड़े, उनके पास बड़ी ताकत है। उसी तरह हमारे मुल्कों के अंदर जो है वो जिन जो हमारे ताल्लुकात होते हैं उसके ऊपर बड़ा जोम होता है, छोटों को बड़ों के ऊपर जोम होता है। मेरे जो है ना वो फलाने खालू जो हैं वो लेफ्टिनेंट कर्नल हैं, और मेरे फलाने जो चाचा हैं या फुप्पा हैं वो जो है वो जरनैल हैं। हमारे यहाँ तो सबसे बड़ी ताकत जो है यही वाली ताकत है। तो आर्मी में होने वालों को जो है ना बड़ा जोम, इंडिया के अंदर जो है वो आपके शायद राज्य सभा और लोकसभा के जो लोग होते हैं वो ज्यादा ताकतवर होते हैं, हमारे यहाँ नहीं ताकतवर होते इतना ज्यादा वो। बहरहाल तो जोम होता है अपने ऊपर भी किसी को होता है, किसी को दूसरे के ऊपर जोम होता है। तो इन लोगों को जो मुशरिक थे इनको अपने उन खुदाओं के ऊपर जोम था जिनको इन्होंने खुदा बनाया हुआ था, जो कि असल में खुदा नहीं थे। ठीक है, हमने भी खुदा बनाया हुआ है इंसानों को जो कि असल में तो खुदा नहीं है, लेकिन हमारा हमारे जानने वाले हैं और वो ब्यूरोक्रेसी में है या वो फौज में है, तो हमने उनको खुदा समझा हुआ होता है कि जी वो तो सब कुछ कर लेंगे, उनको तो कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, तो उसूलन जो है वो वही वाला मसला है जो कि उन लोगों का मसला था, वही हमारा भी मसला है। अल्लज़ीना कुंतुम तज़ुमून, अल्लाह ताला लोगों से कहेंगे जिन लोगों के ऊपर तुम्हारा जोम था, दावा था। तुम फिर उसके बाद क्या होगा, ये स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं। पहले ये होगा हम जमा करेंगे क़यामत के दिन, फिर उसके बाद हम उनसे ये ऐसे खिताब करेंगे, फिर उसके बाद क्या होगा, लम तकुन फितनतुहुम इल्ला अन क़ालू वल्लाहि रब्बिना मा कुन्ना मुशरिकीन, लम तकुन फितनतुहुम, फिर उनके पास जो है ना वो कोई फितना बाकी नहीं रहेगा। फितना का लफ्ज यहाँ पर जो इस्तेमाल हुआ ये धोखे के लफ्ज में, धोखे के माने में इस्तेमाल हुआ, वरना फितना जो है वो प्रिटी मच मोर और लेस पॉइंट तो वो सारे के सारे एक ही तरफ करते हैं। ठीक है, सारे मानी जो फितने के हैं वो एक ही तरफ पॉइंट करते हैं, लेकिन जो है ना वो जाहिरी तौर पर फितने के फिर मुख्तलिफ मुख्तलिफ मानी किए जाते हैं, डिपेंडिंग ऑन द यूजेज, कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से, सियाक व सबाब के एतबार से थोड़े थोड़े डिफरेंट मानी किए जाते हैं। तो यहाँ पर यानी जैसे कि इन्ना मिनल औलादी फितना, या कौन सी वाली आयत है कि तुम्हारी माँ जो औलाद है या तुम्हारे जो 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 अहले खाना है वो तुम्हारे लिए फितना है। ठीक है, तो वो वहां पर फितना क्या, वहां पर फितने का मतलब आजमाइश। ठीक है, कि तुम इन नेमतों के ऊपर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हो या इन नेमतों के अंदर गुम हो करके तुम अल्लाह ताला को भूल जाते हो। तो ये आजमाइश है हमारे लिए, बीवी बच्चे माल असबाब ये सब कुछ। ठीक है, तो वो फितने का मानी क्या, वालमु अन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फितना। माशाल्लाह हुफाज का क्लास में होने का बड़ा फायदा होता है, वैसे कभी कभी हुफाज नहीं भी होते ना तो गूगल पे भी फोनेटिक सर्च माशाल्लाह अवेलेबल है, तो कुछ गैर हुफाज भी गूगल पे सर्च करके बता देते हैं। इन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फितना, ठीक है, तुम्हारी अम्वाल और तुम्हारे औलाद जो है वो तुम्हारे लिए फितना है। ये फितने के लफ्ज जो है वो आजमाइश के मानी में इस्तेमाल हुआ, फरेब के मानी में बज़ाहिर ऐसे इस्तेमाल नहीं हुआ, अगरचे के वो भी मानी बन सकता है, फेंट तान करके वो वाला माने भी निकाला जा सकता है इसमें। anyway, तो यहाँ पर फितना तो हम क्या मतलब कि फिर नहीं रहेगा उनके पास कोई फरेब कोई धोखा। ये जो फरेब और धोखे में मुबतला थे ना कि ये जो पत्थर के लकड़ी के या गोश्त पोश्त के जो उन्होंने खुदा बनाए हुए थे ये तो असल में खुदा नहीं थे। ठीक है, तो इनका ये फितना उस दिन यानी उस दिन इनका धोखा जो है ना ये सारा का सारा रफू हो जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा, हवा हो जाएगा सारा का सारा, बाकी नहीं बचेगा। लम तकुन फितना तो कुन, नहीं रहेगा उनका फितना कोई, इल्ला इल्ला ये के क्या मतलब इल्ला ये अन कालू के, मगर फिर भी वो यही कहेंगे। ठीक है, यानी इनका एक फितना अभी भी बाकी रहेगा, वो कौन सा फितना बाकी रहेगा, ये बड़ा अच्छा एक सवाल आ गया है क्लास के लिए। ठीक है, कि इल्ला फरमाया कि सारे फितने खत्म हो जाएंगे सिवाय इस एक फितने के। ठीक है, जैसे वो इल्ला का लफ्ज है वो आमतौर पर इसी माने में इस्तेमाल होता है, ला इलाहा इल्लल्लाह, कोई नहीं है माबूद, कोई नहीं है इबादत के लायक सिवाय अल्लाह के, यानी एक है इबादत के लायक, बाकी कोई भी इबादत के लायक नहीं है। ठीक है ना, सऊदी अरब के अंदर जो है वो एक है ताजिज, वहाँ पे जो है वो मौलवी लोग भी जा करके खाना खा लेते हैं आसानी से, कि वहाँ की मुर्गी जो है ना वो कन्फर्म है, पकी की चिकन होती है उधर ताजिश के अंदर। तो उन्होंने भी अपना एक जो है ना वो इसी तरह का एक कलमा बनाया हुआ है, ला ताजिज इल्ला ताजिज, कोई ताज़ा है ही नहीं सिवाय हमारे ताज़े के। ठीक है, जो हमारे यहाँ मुर्गी मिलती है ना वही ताज़ा है, बाकी किसी के पास ताज़ा मुर्गी नहीं मिलती। तो ये ला इल्ला जो है ना वो फिर आमतौर पर इसी माने में इस्तेमाल होता है। तो अल्लाह ताला फरमा रहा है कि कोई फितना नहीं बाकी रहेगा इल्ला, सिवाय एक फितने के। कौन सा फितना? अन कालू वल्लाही, कि वो कहेंगे अल्लाह की कसम, रब्बिना जो हमारा रब है, अल्लाह की कसम जो हमारा रब है, मा कुन्ना मुशरिकीन, हम तो शिरक करने वाले नहीं थे, हमने तो शिरक नहीं किया था। तो अब सवाल ये है क्लास से कि ये कौन सा वाला फितना है जो अभी भी इनके पास बाकी रहेगा, बाकी फितने तो रफू हो गए ना, ये कौन सा फितना है जो कि अभी भी इनके पास बाकी रहेगा? झूठ। अब ये गुनाह नहीं पूछ रहे कि ना झूठ बाकी रहेगा इनके अंदर। हाँ ठीक है, झूठ की ऐसी आदत होती है कि वो उधर भी नहीं पीछे छोड़ेगी, उधर भी पीछा नहीं छोड़ेगी, और बज़ाहिर जो है वो यही है, इसके तर्जुमे में भी और आगे तफसीर में भी यही है कि उधर भी जाके झूठ बोलेंगे। ठीक है ना, आदत पड़ जाती है ना। वो हमारे मशाह क्या फरमाते हैं कि बचपन की आदत पचपन में भी पीछा नहीं छोड़ती। ठीक है ना, आदत ऐसी चीज होती है, आदत को तो फिर कुचल कुचल के चेंज करना पड़ता है, वरना वो चेंज नहीं होती। ठीक है, तो पचपन में तो क्या पीछा नहीं छोड़ेगी, वो 55,000 साल गुजरने के बाद भी पीछा नहीं छोड़ेगी, क्योंकि कयामत के दिन तो पता नहीं हजारों साल के बाद जो है वो जमा किया जाएगा। ठीक है ना, तो दुनिया को खत्म करने में तो शायद पता नहीं चंद 100 साल रह गए हैं या पता नहीं कितने साल रह गए हैं, लेकिन उसके बाद जो पीरियड होगा वो तो हजारों साल का पीरियड होगा ना, जिसके अंदर के सब मरे हुए होंगे, सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत के अलावा कोई भी नहीं होगा। तो इतने 1,000 साल गुजर जाएंगे, फिर जो है वो कयामत के दिन उठाया जाएगा, फिर झूठ बोल रहे होंगे। क्यों? 55,000 साल, मैं अपनी वो मुहावरतन बोल रहा हूँ, 55,000 साल के बाद भी आदत खत्म नहीं होगी। ठीक है, तो इसी वजह से ना, एक तो हमारे अंदर जो गंदी आदतें बन गई हैं, तो भाई उनको खत्म करने की मेहनत करेंगे अल्लाह की मदद मांग करके, तब वो खत्म होंगी, वरना खत्म नहीं होंगी। और दूसरी बात क्या कि जो हमारी औलादें हैं, राइट, हमारी औलादें हैं, अगर उनके अंदर भी बुरी आदतें बन रही हैं ना, तो उसको इग्नोर मत करें। ये मत कहें कि बड़ा होकर के खुद ही ठीक हो जाएगा, बड़ी होकर के खुद ही ठीक हो जाएगी, नहीं, आदत बन गई, अब किधर से ठीक हो जाएगी? तो आदत बनने ही नहीं देनी है ऐसी कोई। और इसके लिए माँ बाप को जो है, दोनों को, सिर्फ माँ को नहीं और सिर्फ बाप को नहीं, दोनों को जो है ना वो उकाबी निगाह रखनी पड़ती है अपनी औलाद के ऊपर। उनको देखना पड़ता है, उनको वॉच, उनकी बॉडी लैंग्वेज को समझना पड़ता है, उनकी जुबान के अंदर जो अल्फाज इस्तेमाल हो रहे हैं उनको गौर से सुनना होता है कि क्या बातें चल रही हैं इनकी, क्या सोचें चल रही हैं इनकी, राइट, क्या इनकी आदतें चल रही हैं। गौर से अगर फोन पे मसरूफ रहेंगे हर वक्त, या अगर दूसरे किस्म की जो है वो फजूलियात के अंदर मसरूफ रहेंगे, तो औलादों का कोई ऊपर तवज्जो नहीं दे सकेंगे, राइट, फिर औलादों के अंदर गंदी आदतें बन जाएंगी। अब जो है वो रोने धोने का कोई फायदा नहीं होगा, अब नहीं आप कुछ कर सकते हैं, अब वो खुद ही उसको चेंज करेंगे ना, तब वो आदतें चेंज होंगी, आप कुछ नहीं कर सकते उसके बाद, सर मारती रहिएगा उसके बाद। ठीक है, तो बहरहाल ये तो हो गई ना कि झूठ की आदत थी वो उधर भी खत्म नहीं होगी। लेकिन फितना देखें, अब यहाँ पे हम किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, देखें बात किन की हो रही थी कि अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि तुम्हारे वो शुरका किधर गए, वो बुत किधर गए, वो जो है तुम्हारे जो लीडर्स थे जिनको तुमने खुदा बनाया हुआ था कि भाई ये तुम्हारी मदद करेंगे खुदा के खिलाफ, वो तो सारे के सारे गायब हो गए। ठीक है ना, यानी तुम्हारी गुमराही के जो सबब थे ना, ये बुत पत्थर के, लकड़ी के, गोश्त पोश्त के, ये बुत तो सारे के सारे गायब हो गए, वो तो यानी गुमराही के सारे असबाब तो खत्म हो गए ना, लेकिन एक सबब खत्म नहीं हुआ, गुमराही का सबब वो उधर भी जाकर के खत्म नहीं हुआ। वो कौन सा सबब है? वो बैरूनी असबाब खत्म हो गए, गुमराही के बैरूनी असबाब खत्म हो गए, लेकिन अंदरूनी सबब खत्म नहीं हुआ, राइट, अंदरूनी सबब खत्म नहीं हुआ, जिसको नफ्स कहते हैं। ठीक है, एग्जैक्टली, जिसको नफ्स कहते हैं, वो उधर भी जाकर के खत्म नहीं हुआ। तो अब क्यों झूठ बोल रहे हैं? अब किसकी वजह से झूठ बोल रहे हैं? शैतान तो खत्म हो गए, मुशरिकीन वो जो इनके बुत 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 थे, लीडर वीडर थे, वो तो सारे के सारे खत्म हो गए। अब क्यों झूठ बोल रहे हैं भाई? भाई एक रीजन होता है ना, देयर इज सम इन्फ्लुएंस, एक एक फैक्टर होता है जिसकी वजह से इंसान कोई काम करता है, खुद से वो ऐसी कोई काम नहीं हो रहा होता, ठीक है ना? कोई चीज आपको इन्फ्लुएंस कर रही होती है, तब जाकर के आप कोई काम करते हैं, अच्छा या बुरा। अच्छा भी काम किसी इन्फ्लुएंस की वजह से करते हैं, बुरा भी काम किसी इन्फ्लुएंस की वजह से करते हैं। तो अंदर का जो नफ्स है ना, ये उधर भी जाकर के खत्म नहीं हुआ, इसी वजह से झूठ बोल रहे हैं, ठीक है ना? और कसमें खा रहे हैं झूठी कि अल्लाह की कसम जो कि हमारा रब है, तुमने जो है वो सारी जिंदगी जो है वो अपने दफ्तर को अपना रब माना, तुमने सारी जिंदगी जो है वो अपने खानदान को अपना रब माना, या जो है वो अपने माँ बाप को अपना रब माना कि वही खिलाते पिलाते हैं मुझे, मैं उन्हीं की अतात करूंगी, राइट? चाहे वो अल्लाह के खिलाफ हो, रसूल के खिलाफ हो, अखलाकियात के खिलाफ हो, मैंने तो अम्मा अब्बा की अतात करनी है क्योंकि वही मेरे रब है, राइट? या जो है मैंने अपने दफ्तर वालों की अतात करनी है, या मैंने अपने सियासी लीडर की अतात करनी है, या मैं अपने सो कॉल्ड रूहानी लीडर की जो कि खुद जो है वो गुमराही का शिकार था, तो मैंने उसकी अतात करनी है। तो तुमने तो उन लोगों को रब बनाया हुआ था ना, लेकिन कयामत के दिन कहेंगे अल्लाहु रब्बेना, है कसम है अल्लाह की जो कि हमारा रब है, झूठ बोल रहे हो, झूठ बोल रहे हो, ठीक है? तो इन्होंने लिखा है कि कब्र के अजाब के बावजूद भी नफ्स नहीं टूटेगा, नहीं, ठीक है ना? ये जो कुफर वाला है ना, काफिर, ठीक है, ये ईमान वालों का तो कब्र के अजाब के जरिए से तज़किया हो रहा होगा ईमान वालों का, ठीक है ना? लेकिन ये काफिर का तज़किया कब्र के अजाब से नहीं हो रहा होगा, काफिर का तज़किया तो जहन्नुम के सदा से भी नहीं हो रहा होगा। भाई ये जो नफ्स टूटने का मतलब क्या है, नफ्स का तज़किया हो जाना? इन्होंने सवाल किया था कि कब्र के अजाब के बावजूद भी नफ्स नहीं टूटेगा, ठीक है, तो नफ्स जो है ना उसका टूटने का मतलब क्या है, नफ्स का तज़किया होना, ठीक है ना? उसी को नफ्स के टूटने टूटना कहते हैं, उसी को नफ्स का तज़किया कहते हैं, ठीक है ना? तो कुफर जो है ना वो एक ऐसी ऐसी बुरी चीज है कि नफ्स, काफिर के नफ्स का तज़किया कब्र के अज़ाब से भी नहीं होगा, काफिर के नफ्स का तज़किया जो है वो जहन्नुम के अज़ाब से भी नहीं होगा, ठीक है ना? तो इसी वजह से वो जहन्नुम में ही रहेगा। अगर तज़किया हो जाए तो फिर तो पाक साफ हो गया, अब तो उसको वहां से निकालना पड़ेगा, अब तो उसको जन्नत में डालना पड़ेगा क्योंकि वो पाक साफ हो गया, लेकिन वो नहीं पाक होगा। अल्लाह ताला फरमाते हैं ना कुरान मजीद, हम अपनी तरफ से बात नहीं कर रहे, कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि उनका तज़किया नहीं किया जाएगा, राइट हाफिज साहब, ये वाली भी आयत बता दें अगर, कि उनका तज़किया नहीं किया जाएगा कयामत के दिन, ठीक है ना? वो गंदे के गंदे ही रहेंगे, नफ्स की गंदगी में उधर भी मुलव्वस रहेंगे, इसी वजह से वो गंदी जगह पर ही बरकरार रहेंगे जो कि जहन्नुम है, ठीक है ना? गंदी चीज को गंदी जगह पे रखना चाहिए ना, ठीक है ना? पाक चीज को तो गंदी जगह पे नहीं रखा जाता, जो पाक या पहले गंदी थी अब पाक हो गई, अब तो उसको गंदी जगह पे नहीं रखा जाएगा, तो उसको तो वहां से निकालना पड़ेगा। काफिर को तो कभी भी नहीं निकाला जाएगा, क्यों नहीं निकाला जाएगा? क्योंकि वो गंदे का गंदा ही रहेगा, वो गंदे का गंदा ही रहेगा, ठीक है? तो नफ्स ऐसी चीज है, ठीक है, और क्यों ना हो ऐसी चीज, क्यों ना हो ऐसी गंदी चीज कि ये परवरदिगार का मुकाबला करता है, क्यों ना हो ऐसी नफरत वाली चीज, क्यों ना हो ऐसी सजा वाली की मुस्तहिक चीज, जबकि ये अल्लाह का मुकाबला करता है, राइट? अल्लाह के मुकाबले पर तो कोई भी नहीं आता सिवाय इस नफ्स के, ठीक है? तो वो कहेंगे, उधर भी जाकर ये कह रहे होंगे, उनजो देखिए, देखो तो सही, कैफा कज़बू, कैसे जो है वो झूठ बोल रहे हैं, अला अनफुसहिम, अपने ऊपर झूठ बोल रहे हैं, यानी जो खुद किया था ना तो उसके ऊपर जो है मुकर गए, हम कहते हैं उर्दू के अंदर के मुकर मुकर गया, अभी बोला है एक बात उसके ऊपर मुकर गया, नहीं मैंने तो ये बात करी नहीं है, ठीक है? तो जो झूठा होता है ना उसका झूठ फिर इस दर्जे का पहुंच जाता है कि उसको अपना झूठ सुनाई नहीं दे रहा होता कि वो क्या बोल रहा है, ठीक है? पिछले दिनों क्लास में भी किसी में आपने ही गालबन जो है वो ये किया था कि झूठ बोल रहे होते हैं लेकिन अपना झूठ जो है वो नजर नहीं आ रहा होता। हमारे हजरत ने भी वाकई इस तरह के बयान किया, वो कसर करते थे कि एक दफा जो है वो हमारे इन फैक्ट्री में इंजीनियर एक था, तो वो बड़ी आमियाना जिंदगी थी उसकी, ड्रामे भी देखता था, फिल्में भी देखता था, गालियां भी बकता था, और पता नहीं हर किस्म का गुनाह करता था, जुबान भी उसकी खराब थी, हरकतें भी खराब थी। तो एक दफा मेरे मुझे मौका मिला तो मैंने उसके सामने तौबा के मौजू के ऊपर आधा घंटा बात करी। ठीक है, तो आधा घंटा सुनता रहा मेरी बात, फिर कहता है कि आपने बड़ा जबरदस्त बहुत अच्छी बातें करी हैं, मेरा दिल जो है बड़ा नरम हो गया है, मैंने इल्म और इरादे से तो कभी कोई गुनाह किया ही नहीं। फिर कहता है कि मैंने तो कभी इरादे से गुनाह किया ही नहीं, हाँ अगर कभी हो गया हो तो अल्लाह माफर है। तो हजरत फरमाते हैं कि उसकी ये बात सुन करके मेरे पैरों तले जमीन निकल गई कि कैसे कैसे गुनाहों के अंदर ही मुब्तला है, और कहता है मैंने तो कभी इरादे से गुनाह किए, सारे इरादे जो कर रहा है ये बगैर इरादे के गुनाह कर रहा है। इसका मतलब कैसा इंसान मुकर जाता है ना। उसी तरीके से आमतौर पर घरों के अंदर भी इस किस्म के मुशाहदे होते रहते हैं कि अपने फेस सेफ करने के लिए या जो है वो अपना बस अपना केस प्रेजेंट करने के लिए झूठ बोल रहे होते हैं। अब आगे से अगर कोई थोड़ा सा आईना दिखा दे ना कि भाई ये तो यू आर कॉन्ट्रडिक्टिंग योर सेल्फ, फौरन मुकर जाएंगे, नहीं मैंने तो ऐसा कहा ही नहीं था, मैंने तो ये कहा ही नहीं। ठीक है, तो ये नफ्स के धोखे होते हैं, इसको नफ्स का धोखा कहते हैं। ठीक है, इन्होंने जय माशाल्लाह आयत यहाँ पे नकल फरमा दी है, इन लजीना यश्तरून बिअहदिल्लाही व अईमानिहिम थमनन कलीलन, जिन लोगों ने अल्लाह ताला के साथ किया हुआ जो अहद है ना उसको बेच दिया और वादों को बेच दिया, बस थमनन कलीलन बहुत ही कलील चीज, कलील कीमत के बदले में, यानी दुनिया की छोटी छोटी सी ख्वाहिशों के बदले में बेच दिया उन्होंने अल्लाह ताला के साथ किया हुआ अहद, अल्लाह के ताला के साथ क्या अहद किया था, अलस्तु बिरब्बिकुम कालू बला शहिदना, कि आप ही हमारे रब हैं और कोई हमारा रब नहीं है, ये वादा करके आए थे, बेच दिया इस वादे को छोटी छोटी ख्वाहिशों की वजह से। उलाइका ला खलाक लहुम फिल आखिरती वला युकल्लिमुहुमुल्लाहु वला यंजुरु इलैहिम यौमल कियामती वला युज़क्कीहिम, राइट, ना उनकी तरफ देखेंगे कयामत के दिन अल्लाह ताला और ना उनका तस्किया करेंगे, वलहुम अजाबुन अलीम, और दर्दनाक अजाब होगा। ठीक है ना, तो कुरान मजीद में अल्लाह ताला खुद बता रहे हैं मैं उनका तस्किया नहीं करूंगा, उनका तस्किया नहीं किया जाएगा, उनको पाक साफ नहीं किया जाएगा, वो गंदे ही हैं, वो गंदे ही रहेंगे, उनको गंदा ही छोड़ दिया जाएगा अजाब के साथ मिला करके, बस बस अजाब होता रहेगा उनके ऊपर, अजाबुन अलीम। ठीक है, तो अल्लाह ताला के साथ किए हुए वादे को जो है ना हम अगर तोड़ रहे हैं तो ये नहीं है कि कोई मसला नहीं है, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। ठीक है ना, एक तरफ कुरान का इकरार भी करते हैं, कुरान अल्लाह की किताब है, ये है वो है, और दूसरी तरफ कुरान का इनकार भी करते हैं, तो कुछ नहीं होता। ठीक है, तो उन्दुर कैफ कज़बू अला अनफुसहिम, देखो तो सही कि कैसे जो है ना वो अपने बात से ही मुकर गए हैं, झूठ बोल रहे हैं, वो ज़ल्ल अनहुम, और गुम हो गई उनसे ना, वल्ला का मतलब कि गुमराही, यहाँ पे गुमराही के माने में बल्कि जो जो ये लोग जो है ना वो झूठ बनाया करते थे ना, ठीक है, तो वो खो गई, गायब हो गई सारी की सारी चीजें। अब वल्ला अनहुम मा कानू यफ्तरून, जो अल्लाह ताला के ऊपर झूठ बांधा करते थे, एवरीथिंग इज लॉस्ट, खत्म हो गया वो उनके पास सब सब कुछ, मान नहीं रहे अभी भी लेकिन असबाब तो सारे के सारे खत्म हो गए ना, ये खुदा था, वो खुदा था, वो खुदा का शरीक था, वो खुदा को, वो सारे के सारे गायब हो गए। वल्ला अनहु वमिनहु, और इनमें से ऐसे लोग हैं, मैं यस्तमिउ इलैक, बड़े गौर से आपकी बात सुनते हैं, एक तरफ जो है वो फरमा रहे हैं कि गौर से बात सुना करो, और यहाँ पे फरमा रहे हैं कि ये जो मुशरिक है ना ये भी गौर से बात सुना करते हैं। ठीक है, तो गौर से बात सुनना लेकिन नीयत खराब थी इनकी। ठीक है, तो यहाँ पर खराब नीयत वालों की बात हो रही है, वो मैं इनमें से ऐसे थे कि जो के बड़े गौर से कान लगा करके आपकी तरफ रहते थे, व जालना अला कुलूबिहिम अकिन्ना, और हमने बना दिया उनके दिलों के ऊपर अकिन्ना, ठीक है, पर्दे या कान के अंदर जैसे वो होता है ना, कुछ लोग डांट भी कहते हैं उसको, डांट, ठीक है, जैसे आप लोग कुछ 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 जो है वो स्विमिंग पूल के अंदर जब जाते हैं ना तो क्या कहते हैं उसको, कान के अंदर पानी ना जाए, खास लफ्ज बच्चे वो खास इस्तेमाल करते हैं, स्टॉपर्स टाइप के ना, ठीक है ना, जैसे कि हमारे ये हेडफोन्स होते हैं ना, हेडफोन की शक्ल की चीज होती है, तो वो जो है ना फिर कुछ घुसने नहीं देते कान के अंदर, तो अल्लाह ताला फरमाता है कि हमने भी उनके कानों के अंदर ना ऐसी चीजें डाल दी हैं, उनके दिलों के ऊपर पर्दे डाल दिए हैं। यहाँ पे खैर कान की बात नहीं हो रही, आदान वकरा, सॉरी डार्ट जो है वो तो वकर, मैं तली शुरू हो गया उसके ऊपर, ईयरबड्स वो तो वकर की बात हो रही है, मैं यहाँ पे अकिन्ना जो है ना वो तो पर्दों का मामला, दिलों के ऊपर पर्दे डाल देते हैं, हो कि वो कहीं समझ ना ले, राइट, इतना गौर से बातें सुन रहे हैं ना, कहीं समझ ना ले, ठीक है। अजीब, अल्लाह ताला कितने गैरतमंद हैं कि जो बदनीयत होता है और जो कि बेतलब होता है ना, तो इंतजाम करते हैं कि उसको हिदायत ना मिले। क्या इंतजाम कर रहे हैं? कि उसके दिल के ऊपर पर्दा डाल दिया, ठीक है, कि हिदायत का जो नूर है ना वो उसके दिल के अंदर घुसे ही नहीं। ये सब असबाब हैं, अल्लाह ताला को पर्दे डालने की जरूरत नहीं है, चाहे जिस्मानी चाहे रूहानी, ठीक है ना। अल्लाह ताला का फैसला हो गया कि हाँ भाई नहीं पहुंचने इसके दिल के अंदर हिदायत का नूर, बस नहीं पहुंचेगा, लेकिन नहीं, अल्लाह ताला ने असबाब की दुनिया बनाई है, असबाब की दुनिया, ठीक है ना। तो अब अल्लाह ताला करते हैं काम, तो असबाब को इस्तेमाल करते हैं। तो जिस तरह से फिजिकल आवाज को पहुंचने से रोकने के लिए अल्लाह ताला जो है वो कोई सबब इस्तेमाल कर ले, उसी तरह से रूहानी नूर को पहुंचने से रोकने के लिए अल्लाह ताला जो है वो रूहानी पर्दे इस्तेमाल करते हैं। ये असबाब है, अल्लाह ताला इनके मोहताज नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला का ये निजाम है कि वो असबाब इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। जिस तरह इल्म पहुंचाने के लिए उस्ताद का सबब इस्तेमाल करते हैं, तो उस्ताद की कोई हाजत तो नहीं है अल्लाह ताला को, राइट। तजकिया करने के लिए अल्लाह ताला जो है वो नबी को इस्तेमाल किया, सहाबा कराम का तज़किया करने के लिए, और सहाबा के और नबी के बाद जो है वो मशाइख को इस्तेमाल किया उम्मत के दूसरे लोगों का तज़किया करने के लिए। अल्लाह ताला मोहताज तो नहीं है इन सब चीज़ों के, लेकिन असबाब मुकर्रर कर दिए ना, और असबाब को इस्तेमाल किया ना, इसी तरह हर चीज़ के लिए असबाब इस्तेमाल करते हैं। तो दिल के ऊपर पर्दा डाल दिया, वफी आदानहिम वक्र, और उनके कानों के अंदर वक्र, ठीक है ना, ईयरबड्स, ठीक है, स्टॉपर्स कान के अंदर लगा दें। ये अल्लाह ताला को ना ये जाती इनाद हो जाता है, इसको देखें ये क्या है, ये क्या कर रहे हैं अल्लाह ताला, ठीक है, इसको जाती इनाद कहते हैं। अल्लाह ताला को कुफर के साथ, और कुफर में भी जो है ना, ये नहीं कि हर काफिर को, भाई कितने काफिर मुसलमान हो जाते हैं, ठीक है ना, तो अगर उनके साथ जाती इनाद था तो फिर अल्लाह ताला ने उनको अपने महबूबों में कैसे बना लिया? कौन जो है पैदाइशी मुसलमान था, सिवाय जो नबी जो थे वो पैदाइशी तौर पर मासूम थे, या अबू बकर सिद्दीक और एक दो और सहाबा, वो जो है वो पैदाइशी तौर पर दीन फितरत के ऊपर थे और शिरक नहीं किया करते थे, शराब भी नहीं पिया करते थे, बाकी तो सारे कॉन्वर्ट्स हैं ना, राइट, सारे सहाबा कॉन्वर्ट्स हैं, और सारे सहाबा को अल्लाह ताला की रजा मिली है। तो अगर कुफर के साथ ऐसा इनाद होता कि नहीं बे तुमने क्यों करा, क्यों तुमने, अब तो बस तुम जहन्नुमी हो, तो फिर तो कोई भी मुसलमान नहीं हो सकता था, ठीक है। तो ये जो इंडिकेशन हमें इनके साया से मिली ना, कि जाती इनाद होता है, ठीक है, तो ये जाती इनाद की क्या वजह होती है कि नबी के साथ शदीद दुश्मनी भी, लेकिन ये जो बेतलबी वाली कैफियत है ना, ये नहीं छोड़ करके दे रहे, ठीक है, इख्तियार अल्लाह ने दिया है, लेकिन उस इख्तियार को जो है वो जिद में ही इस्तेमाल कर रहे हैं, और बेतलबी में, बेतवज्जुही में, बस जिद लगाई हुई है कि नहीं मैंने तो सुनना ही नहीं, मैंने तो जो है ना वो तलब पैदा करनी नहीं अपने अंदर, ठीक है। तो फिर अल्लाह ताला उनके साथ ऐसा मामला करते हैं, और ये बार बार कुरान मजीद के अंदर, इवन पहले ही सफ़े के अंदर जहाँ पे उन वाले कुफार का जिक्र है, ठीक है, बिल्कुल क्लियर जो कुफार होते हैं उनका जिक्र है, वहां पर भी यही है, वजअलना अला कुलूबिहिम अकन्ना, ये सारी बातें हैं ना सूरह बकरा के शुरू के आयात में। व इन यरो, और अगर वो देख लें, कुल्ल आयतिन, सारी की सारी निशानियां भी, ला युमिनुना भी, ला युमिनु बिहा, फिर भी वो ईमान नहीं लेकर के आए। जिद्दी नफ्स ऐसा ही होता है, कुछ कर लो उसके साथ, कोई निशानी दिखा दो उसके सामने, कोई जो है वो अकली दलील दे दो उसको, उसने नहीं मार करके देनी होती। इसी वजह से दावत और तबलीग का जो तरीका है ना, वो अल्लाह ताला से मदद मांगना, किसी को समझाने से पहले, किसी को बात करने से पहले अल्लाह ताला ही की तरफ मुतवज्जो होना, और ये अल्लाह ताला के साथ तय कर लेना कि अल्लाह मैं कर तो रहा हूँ, मैं भरपूर कोशिश करूंगा अपनी, मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, मैं जो ना वो कोई इसमें सुस्ती नहीं दिखाऊंगा, मैं अब पैगाम पहुंचाने की भरपूर कोशिश करूंगा, लेकिन ऐ अल्लाह मैं कुछ कर लूं, मैं इनको हिदायत नहीं लेके आ सकता, मैं बात इनके अंदर नहीं पहुंचा सकता, मैं इनको इकरार करने पे आमादा नहीं कर सकता। ये तो सिर्फ और सिर्फ आप ही का फैसला है, ये तो सिर्फ और सिर्फ आप ही की मर्जी है। तो ये जो है ना, ये जो नीयत का बन जाना ना अल्लाह ताला के साथ, किसी को समझाने से पहले, बयान करने से पहले, क्लास करने से पहले, ये असल काम, असल तरीका है दावत व तबलीग का। इसी वजह से हमारे मशायख जो है ना, वो यही समझाते हैं कि जब बयान करने जाओ, जब जो है वो कोई लेक्चर करने जाओ, जब जो है वो क्लास करने जाओ, एक लम्हे के लिए पहले अल्लाह के साथ एक रिश्ता जोड़ लो, नहीं इम्प्लिसिटली जोड़ लो, ठीक है ना, अपने फोकस को, अपने तवज्जो को मरकूज करके अल्लाह ताला के साथ एक रिश्ता जोड़ो, फिर बात करनी शुरू करो, फिर क्लास में बात समझाना शुरू करो, हत्ता के घर में भी किसी को अगर समझाते हो, पहले अल्लाह ताला के साथ एक ताल्लुक जोड़ो, फिर घर में जो है वो नसीहत की बात करो किसी के साथ, ठीक है। जिन लोगों को इस बात का इस्तेहजार हो जाता है, वो फिर हकीकत को पाया जाते हैं, जिनको नई बात सुनते हैं, नहीं मानते, तो फिर वो लगे हुए दावत तबलीग के अंदर, लगे हुए समझाने के अंदर, लगे हुए अपने बंदे को कन्विंस करने के अंदर, और जाहिर है फिर उसको तो उन्होंने क्या कन्विंस करना है, उसने क्या बात माननी है, पर उल्टा ये खुद ही फ्रस्ट्रेट हो रहे होते हैं, खुद ही जो है वो गुस्से में आ रहे होते हैं, खुद ही जो है वो फिर वो उल्टी सीधी हरकतें करना शुरू हो जाते हैं, दाई साहब या दाइया साहिबा, क्यों? इसलिए कि अल्लाह से ताल्लुक नहीं जोड़ा था, ठीक है। तो इंसान का नफ्स जो है ना, ये सबसे बुरी चीज है, तो इसको हैंडल करना, समझाना, ये अल्लाह ही ने करना है, हमने हमने नहीं करना, हम कर ही नहीं सकते। तो ये लोग जो है ना, ये अल्लाह ताला क्या इसके पिक्चर खींच रहे हैं हमारे से, वह इन यरो कुल्ला आयत, अगर ये सारी निशानियां भी देख लें, ला यूमिन, नहीं मान के देना है, हत्ता इदा जाऊ का युजादिलून का, यहां तक कि जब आते हैं तेरे पास, युजादिलून का, आपसे झगड़ते हुए आपके पास आते हैं, ठीक है, यकूलुल्लज़ीना कफरू, कहते हैं वो लोग जिन्होंने कुफर किया, इन हाजा इल्ला असातिरुल अव्वलीन, ये जो आप सारी बातें कर रहे हैं ना, ये तो वही असातिरुल अव्वलीन है, पुराने लोगों की, यानी पहले जो गुजर चुके हैं ना, उनकी बस कहानियां हैं, यानी दिस इज अफसाना, अफसाना निगारी, ठीक है ना, फलसफा, अफसाना, और जिसका क्या, अफसाना और फलसफा का लफ्ज किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, उस चीज के लिए इस्तेमाल किया जाता है जिसका रियलिटी के साथ कोई ताल्लुक ना, ठीक है ना, हकीकत के साथ कोई ताल्लुक ना। तो वो लोग एक्सप्लिसिटली जुबान से ये बात कहते थे कि ये जो नसीहत की बात है ना इनका, ये जो यानी जो कुरान की आयत आप तिलावत कर रहे हैं, जो मरने के बाद के बारे में आप हमें बता रहे हैं, इसका हकीकत के साथ कोई ताल्लुक नहीं, ठीक है ना, और जाहिर किताबी हिदायत, हिदायत के लिए पढ़ रहे हैं ना, तो हम उनके किस्से तो नहीं, वो ऐसा करते थे, वो ऐसा करते थे, वो ऐसा करते थे, चलो भाई क्लास के क्लास खत्म हो गई, कुरान पढ़ लिया जी हमने, कुरान सीख लिया जी हमने, नहीं, हमारा काम उस वक्त तक पूरा नहीं होगा जब तक हम उसको अपने ऊपर मुतबिक ना करें कि हम भी यही करते हैं कि नहीं करते हैं, ठीक है, कि जो नसीहत की बातें हैं वो बड़ी अच्छी लगती हैं हमको, हम मुसलमान हैं, और अगर मौलाना साहब अच्छे लगने शुरू हो गए या पीर साहब जो हैं वो अच्छे लगने शुरू हो गए, तो हम सुनते भी हैं उनकी बातें बड़े गौर से, ठीक है ना, और वाह वाह भी करते हैं और टसवे भी बहा देते हैं और हाँ हाँ भी कर लेते हैं और सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन इधर जो है वो बयान ख़त्म हुआ, उधर जो है ना फिर हम असल ज़िंदगी शुरू करते हैं उसके बाद, ठीक है, कुछ लोग ज़्यादा आगे बढ़ जाते हैं तो वो इज्तिमा में चले जाते हैं, ये जी तबलीगी इज्तिमा है, ओहो 3 दिन तक जो है ना वो अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह, आखरत ही आखरत, आखरत ही आखरत, ठीक है, और जब तकलीबी तबलीगी इज्तिमा ख़त्म हुआ तो अपनी दुकान में आए, अपने घर में आए, तो बीवी के साथ भी वही बदतमीजियाँ, राइट, बीवी के ऊपर जुल्म, बच्चों के साथ जो है वो जुल्म, और उनकी हक तलफी, इनकी हक तलफी, और दुकान में गए तो वहां पे अपना वही झूठ और धोखा और फरेब और बुरी बुरी हरकतें, वही तबलीगी भाई, लंबी सी दाढ़ी वाले, और पैंचा जो है वो शलवार का पैंचा जो है वो टखनों से ऊंचा, राइट, और जो है वो टोपी के बगैर जो है वो जिंदगी नहीं गुजरती, और तबलीगी इज्तिमा जो है वो कभी मिस नहीं होता, तबलीगी हो या नक्शबंदी हो, है ना, या जिस, तो नक्शबंदी और तबलीग दोनों एक साथ इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना, नक्शबंदी इज्तिमा भी कभी मिस नहीं होता है, तबलीगी भी मिस नहीं होता, और भी कोई इज्तिमा करवा लो उधर भी पहुंच जाएंगे, ठीक है, लेकिन दिस हैज नथिंग टू डू विद रियलिटी। रियलिटी में तो फिर एक पैरेलल लाइफ चल रही है ना, ठीक है। तो ये क्या है, यही है ना कि ये तो असातिर अवलीन है, ये तो किस्से कहानियां हैं, इनका रियलिटी से कोई ताल्लुक नहीं है। वही बात तो वो लोग भी कहते थे, ठीक है। तो अगर हम इस तरीके से अपने आप को आईने में देखेंगे, तब फिर ये कुरान जो है ना, ये जो दरस कुरान है, ये हमारे लिए फायदेमंद बनेगा, तब हम इस दरस कुरान से फायदा उठाने वाले बनेंगे। और अगर हम इसको उनके हालात पढ़ने के लिए पढ़ रहे हैं, तो फिर तो कहानी की कोई किताब से ज्यादा फिर क्या होगा फिर। वहुम यनहौना अनहु व यनअहुना अनह, और वो लोग मना करते हैं, रोकते हैं, नहा यनहु मना करना, नहीं करना, जैसे उर्दू में नहीं का लफ्ज इस्तेमाल होता है, व यनअहुना अनहु, और भागते हैं उनसे, ठीक है। यानी ये जो नबी अलैहिस्सलाम बातें कर रहे हैं नसीहत की, तो ये रोकते भी हैं और लोगों को सुनने से, और खुद जो है वो भागते हैं। वइन युहलिकून इल्ला अनफुसहुम वमा यशुरून, और ये नहीं हलाक करते, इन यहाँ पे नाफिया है, नफी के लिए, कि नहीं युहलिकून, नहीं हलाक करते, अहलक युहलिकु, ये नहीं हलाक करते सिवाय अपनी जान, वमा यशुरून, लेकिन इसका शऊर नहीं है इनके पास, दे डोंट रियलाइज व्हाट दे आर डूइंग टू देमसेल्व्स, ये अपने आप के साथ क्या कर रहे हैं। खुलासे तफसीर, ये भी आज शुरू कर लेते हैं टाइम। खुलासे तफसीर में जो हज़रत थानवी रहमतुल्लाह के बयान कुरान से है, तो उसमें एक हेडिंग लगाई बाकायदा कि कैफियत कैफियत अदम फलाह मुशरिकी, ठीक है। यानी मुशरिकों की कामयाबी का ना होना की कैफियत क्या होगी, ठीक है, यानी उनकी नाकामी की कैफियत क्या होगी, व्हाट विल बी द सिनारियो ऑफ देयर डिसअपॉइंटमेंट या ऑफ देयर फेलियर, क्या होगा वो सिनारियो। तो इन आयात में गोया कि ये सिनारियो बयान किया गया है, ठीक है। फरमाते हैं कि और वो वक्त भी याद रखने के काबिल है, ये जो अल्लाह ताला फरमाते हैं ना, वह यौमा, तो इसकी इसकी असल में इसका मफहूम क्या होता है, कि याद रखने के लायक है वो दिन, ठीक है, कि जिस रोज हम तमाम खलायक को मैदान हशर में जमा करें, ठीक है, मखलूक सारी सारी मखलूक मैदान हशर में जमा होगी, हत्ता के यानी फरिश्ते भी जमा होंगे वहां पर, लेकिन फरिश्तों का दूसरा काम होगा, लेकिन जिन और इंसान जो है ना, वो तो हिसाब किताब लिए जाने के लिए जमा होंगे, फरिश्ते जो है वो हिसाब किताब इकट्ठा करने के लिए जमा होंगे। तो हम तमाम खलायक को मैदान हशर में जमा करेंगे, फिर हम मुशरिकीन से बवास्ता या बिला वास्ता बतौर जजर व तौबीख के कहेंगे, ठीक है ना। यानी जो मुशरिकीन होंगे, तो अल्लाह ताला डायरेक्टली या तो कोई आवाज आएगी अल्लाहु आलम, या ये है कि फरिश्तों को मुकर्र करेंगे, जाओ जाकर के इनसे पूछो, तो फरिश्ते आकर के ऑन बिहाफ ऑफ अल्लाह सुब्हानहू ताला पूछेंगे, और वो जो पूछेंगे ना, वो बड़े प्यार से और जो है वो अच्छे सॉफ्ट तरीके से सवाल नहीं करेंगे, जैसे कि कोई जॉब इंटरव्यू लिया जा रहा है, या बल्कि वो जजर और तौबीख के साथ, यानी गरज चमक के साथ, डांट डपट के साथ जो है वो ये सवाल करेंगे, कहेंगे कि बतलाओ तुम्हारे वो शुरका जिनके माबूद होने का तुम दावा करते थे कहाँ गए, अइना शुरका, ठीक है, कहाँ गए वो सब, कि तुम्हारी सिफारिश नहीं करते जिस पर तुमको भरोसा था, है ना, इस वक्त जो है वो तुम्हारी मदद को नहीं आते, वो क्यों नहीं आ रहे तुम्हारी मदद को। फिर उनके शिर्क का अंजाम इसके सिवा और कुछ भी जाहिर ना होगा, कि वो इस शिर्क से खुद बेजारी और नफरत का इजहार करना शुरू हो जाए, और बदहवासी के आलम में यूं कहेंगे कि कसम अल्लाह की अपने परवरदिगार की, कसम अल्लाह की अपने पर, यानी जो हमारा परवरदिगार है, कि हम मुशरिक थे ही नहीं, नहीं? ना रब्बना मा कुन्ना मुशरिकीन, हम मुशरिक थे ही नहीं। हतारे ने फरमाया ताज्जुब की नजर से, यानी ताज्जुब की अंदाज में अल्लाह ताला ने फरमाया, अल्लाह ताला को तो सब पता है, अभी भी पता है कि उन्होंने बाद में जाके क्या करना है, तो जब जिस चीज का पहले से पता होता है इंसान, उसके ऊपर तो नहीं ताज्जुब करता है, उसके ऊपर तो हैरान नहीं होता, तो अल्लाह ताला को कोई हैरानी नहीं होगी, लेकिन बात करने का एक असलूब होता है, जैसे होता है ना कि अम्मा अब्बा को पहले से पता है कि बेटे ने क्या हरकत करनी है, फिर जब वो हरकत करता है ना, तो है आपने ऐसा कर लिया, हमें आपसे ऐसी तवक्को, हालांकि उनको पहले से तवक्को थी, उनको पता था कि बच्चे ने ऐसी हरकत करनी है, क्योंकि उसके हालात नजर आ रहे थे, लेकिन उसके सामने जो है ना वो अंदाज बदल करके बात करते हैं, गोया कि उनको बड़ी हैरत हो रही है, ठीक है ना। अल्लाह रब्बुल इज्जत को तो सब कुछ उतना उससे भी ज्यादा पता है जितना कि माँ बाप को पता होता है अपनी औलाद के बारे में, लेकिन ऐसे फरमाएंगे ताज्जुब की नजर से कि जरा देखो तो सही कि किस तरह सरी झूठ बोला अपनी जानों पर, और जिन चीजों को वो झूठ मूठ तराशा करते थे यानी उनके बुत और जिनको वो खुदा का शरीक ठहराते थे, ठीक है ना। सिर्फ बुत नहीं, पत्थर का, क्योंकि हम तो पत्थर के बुत अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक नहीं बनाते, अल्लाह का शुक्र है, ठीक है। तो हम तो इंसानी बुत बनाते हैं ना, चाहे वो गोरी शक्ल में हो, वेस्टर्न ट्रेडिशन हो, चाहे जो है वो हमारे अपनों में से कोई जो है वो ऐसा बड़ा हो बन जाए उसको बुत बना लेते हैं अपना आइडल्स, ठीक है। तो वो भी तराशना ही होता है, वो सब गायब हो गए, ठीक है। वो झूठ मूठ तराशा करते थे वो सब गायब हो गए। हजरत ने यहाँ पे ब्रैकेट्स में जो लिखा है तशनी बर इनकारे कुरान, ठीक है। तो तशनी का जो लफ्ज तो वही है जो कि तानो तशनी कहते हैं, ताने देना किसी को जो है वो बुरा भला कहना, तो तशनी का तो ये मतलब है। बर इनकारे कुरान यानी इनकारे कुरान का जो वो की वजह से या उसके लिए जो है वो तानो तशनी, ये सारे इसको भी ये बात क्लियर नहीं हुई है अभी तक आपके सामने, इकरार कर रहे हैं कि भाई नहीं हुई है वाली क्लियर बात। बहरहाल आगे जो है कोई अगर लिखना चाहे लिख दे, अपने जिनके आपके ध्यान में बात आ रही है तो आप सकती है बिल्कुल, तो आप बता दें। वो मिन हम मई यस्तमी, ठीक है। जो आगे फरमाया ना कि उनमें से कुछ ऐसे लोग हैं कि जो कि आपकी तरफ बड़ा गौर से जो है वो कान लगा के सुनते हैं, तो फरमाते हैं और इन मुशरिकीन में बाजे ऐसे हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुरान पढ़ने के वक्त उसके सुनने के लिए आपकी तरफ कान लगाते हैं, और चूंकि ये सुनना तलब हक के लिए नहीं महज तमाशे या तमस्खुर की नीयत से होता है, इसलिए इससे उनको कुछ नफा नहीं होता, ठीक है। क्या मतलब कि सुनना इंतहाई अहम चीज है, लेकिन सुनने से भी ज्यादा अहम चीज वो नीयत है कि किस नीयत से और किस गुमान के साथ आप सुन रहे हैं, ये दोनों चीज। गुमान भी नीयत ही की एक यानी एक मैनिफेस्टेशन है कि जैन दिल में क्या चल रहा है आपके, ना उसी को तो गुमान कहते हैं, तो दिल में क्या चल रहा है उसी को नीयत भी कहते हैं, ठीक है ना। तो बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं सुनने का, क्योंकि सुनना एक ऐसी चीज है जिसके बारे में हम पूरी की पूरी क्लास कर चुके हैं रमजान मुबारक के अंदर, स्पेशल क्लास के नाम से, है ना। उसमें पूरा सुनने के बारे में बातें थी, या अय्युहल लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व रसूलहू वला तवल्लु अन्हु व अंतुम तस्मऊन। इस हाल में कि तुम सुनते हो, तुम पीठ मत फेरो ए ईमान वालों, अल्लाह ताला वहां पे ईमान वालों से मुखातिब है कि तुम पीठ मत फेरना, इनकी अतात करना अल्लाह उसके रसूल की, वह अंतुम तस्माउन इस हाल में कि तुम सुनते हो। और फिर आगे जो है वो सुनने के बारे में क्या फरमाया था, वला तकूनु कल्लदीना कालू समिअना वहुम ला यस्माउन, और उनकी तरह से मत हो जाना कि जो कि कहते हैं कि हमने सुना वहुम ला यस्माउन हालांकि वो नहीं सुनते। तो वो तो अल्लाह ताला काफिरों के बारे में बात करें ना कि वो कहते हैं कि हमने सुना लेकिन वो नहीं सुनते, क्या मतलब कि वो सुनते तो हैं लेकिन तलब हक के लिए नहीं सुनते, अच्छे गुमान से नहीं सुनते, अच्छी नीयत से नहीं सुनते, इस वजह से उनका सुनना जो है ना वो ना सुनना है। तो फरमाया ला यस्मऊन हालांकि वो नहीं सुनते, ठीक है। तो वही किस्से कहानी की किताब है, हाँ भाई हमें पता चल गया काफिर जो है ना वो तलब हक की वजह से नहीं सुनते थे, तो किस्से कहानी की किताब आगे बढ़ो भाई अगला किस्सा, नहीं ये तो हिदायत की किताब है मेरी हिदायत के लिए, राइट। आप जो सुन रहे हैं आपकी हिदायत के लिए, तो इस वजह से हम किस्सा पढ़ करके काफिरों का आगे तो नहीं बढ़ सकते, वरना तो हिदायत कैसे मिलेगी फिर इस किताब से, ठीक है ना। तो अब हमें अपने गरेबान में झांक के देखना पड़ेगा कि क्या हम भी यही करते हैं कि सुनते तो हैं लेकिन नहीं सुनते, तो हमें जो है वो डरना डरने की जरूरत है, क्योंकि अल्लाह ताला आगे फरमा रहे हैं इन शर्रद्दवाब, शर्रद्दवाब है वो लोग जो के बहरे बने हुए होते हैं, और चूंकि बहरे बने हुए होते हैं इसी वजह से वो गूंगे भी बने हुए होते हैं, क्योंकि उनको समझ में आएगा तो आगे से बयान करेंगे ना बात, ठीक है ना। हाँ बुरी बातें तो खूब बयान करते हैं क्योंकि बुरी बातें उनको बड़ी समझ में आती हैं, तो आगे से गंदी गंदी बातें जो है वो खूब कर रहे होते हैं, लेकिन अच्छी बात जो है वो तवज्जो से तलब से सुनते ही नहीं है इस वजह से उस मामले में गूंगे होते हैं। असुम्मु अलबुक्म, बुक्म का मतलब गूंगा, ठीक है ना। आगे किसी को सही बात जो है वो कन्वे ही नहीं कर सकते, करते हैं तो ऐसे करते हैं कि अगला बंदा खुद ही जो है ना वो तंग आ जाता है इनकी दावत और तबलीग से, कन्विंस नहीं होता इनकी दावत और तबलीग से, तंग आ जाता है अलबत्ता वो, ठीक है ना। बात ही कन्विंस नहीं हो रही, बात ही आगे नहीं पहुंचा रहे, ठीक है। तो सुनने के ऊपर बहुत ज्यादा मेहनत की हमें जरूरत है, और अपने मैसेज को जो है ना वो आगे पहुंचाने से पहले मैसेज के ऊपर देखें, इसकी एक छोटी सी ट्रेनिंग जो है ना वो हम सब कर सकते हैं अभी, एक छोटी सी ट्रेनिंग, ठीक है ना। खुसूसन वो लोग जिन्होंने कि जो है वो इस्लाही ताल्लुक बनाया है, खुसूसन वो लोग जिन्होंने इस्लाही ताल्लुक बनाया हुआ है और जो शेख को व्हाट्सएप मैसेजेस करते हैं, वो ट्रेनिंग करें इस बात की। वो ट्रेनिंग ऐसे करें कि जब आप कोई मैसेज लिखते हैं ना तो उस मैसेज की नोक पलक दुरुस्त करें पहले, ठीक है ना। उसकी नोक पलक दुरुस्त करें, उसको पढ़ें कि मैंने जो लिखा है डज इट इवन मेक सेंस, इसके अंदर लफ्जी गलतियां तो नहीं है कहीं, इसके अंदर मानवी गलतियां तो नहीं है कहीं, ठीक है। अच्छी तरह से मैसेज को समझ करके ठीक करके फिर उसके बाद आगे सेंड करें। शेख को दावत तो तबलीग नहीं की जा रही होती, लेकिन ये एक ट्रेनिंग ग्राउंड है ये, कि कैसे मैसेज को पक्का करके अच्छा बना करके फिर आगे मैंने पहुंचाना है, ठीक है ना। वो क्रिकेट में होता है ना कि पहले नेट प्रैक्टिस करते हैं फिर जाते हैं असल ग्राउंड में खेलने के लिए, तो शेख के साथ नेट प्रैक्टिस करें, ठीक है ना। जिनको क्रिकेट का पता है उनको नेट प्रैक्टिस का तो पता ही होगा, ठीक है। तो पहले तोलो फिर बोलो, तो हम बचपन से बल्कि पता नहीं पैदा होने से पहले से सुनते आ रहे हैं, पहले तोलो फिर बोलो, लेकिन करके तो नहीं देना इसके ऊपर अमल हमने, सही है। तो ये है मामला ना, कि ये सुनते तो थे लेकिन तलब हक के लिए नहीं, तमाशे तमस्खुर या वही जो है वो विंडो शॉपिंग, इधर भी सुन लिया उधर भी सुन लिया उधर भी सुन लिया उधर भी सुन लिया, ठीक है। हर एक ही सुनते हैं और अगर अंदर कुछ भी नहीं उतरता क्योंकि असल में तो नहीं सुन रहे होते, तो इसलिए इससे उनको कुछ नफा नहीं होता। चुनाचे हमने उनके दिलों पर पर्दे डाल रखे हैं, इससे कि वो इस कुरान के मकसूद को समझें, और उनके कानों में बोझ भर दिया है कि वो इसको हिदायत के लिए नहीं सुनते। ये तो उनके दिलों और कानों की हालत है। तो ऐसे जब एटीट्यूड इंसान का रहता है तो फिर अल्लाह ताला जो है ना वो खुद जो है वो प्रिवेंशन कर रहे होते हैं उसको, ठीक है। लेकिन जब इंसान अपना एटीट्यूड तब्दील करता है और थोड़ी सी भी तलब पैदा करता है ना, तो अल्लाह ताला तो गोया के इंतजार में बैठे हुए थे। उर्दू में मुहावरतन कहा जाता है ना कि गोया के बंदा इंतजार में बैठा होता, जैसे ही थोड़ा सा भी कहते हैं ना जरा सा उंगली बढ़ाई थी उन्होंने हाथी पकड़ लिया, ठीक है ना। उंगली बढ़ाई थी उन्होंने हाथी पकड़ लिया, यही अल्लाह ताला की रहमत का मामला है। हम उंगली भी नहीं बढ़ाते ना, हम सिर्फ अपने जहन की तवज्जो अल्लाह ताला की तरफ करते हैं और हक की तरफ करते हैं, अल्लाह ताला हमें उचक लेते हैं, हिदायत के लिए उचक लेते हैं, आगे बढ़ करके हमें पकड़ पकड़ ले। इसी को फरमाया कि वह आता ही तो हर वाला, कि तुम जो है ना वो चल कर आते हो मेरी तरफ, मेरी रहमत तुम्हारी तरफ दौड़ के जाती है, ठीक है। यही तो है रहमत दौड़ के जाना, कि आपको हिदायत के लिए पसंद कर लिया अल्लाह ताला ने, ठीक है। तो और अगर ऐसा नहीं होता, जब तक ऐसा नहीं होता उस वक्त तक जो है ना वो ये दूसरा मामला चल रहा होता है। तो ये तो उनके दिलों और कानों की हालत थी। अब उनकी बसारत और निगाह को देखो, यानी देखने की सलाहियत जो अल्लाह ताला ने दी उसको देखो, कि अगर वो लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिद्क नबूवत के तमाम दलाइल को भी देख लें, उन पर भी ईमान नहीं लाए, उनके इनात की नौबत यहां तक पहुंची है कि जब ये लोग आपसे सुन के पास आते हैं तो आपसे खामखा झगड़ते हैं, है ना। फजूल में जो है वो आर्ग्यूमेंटेशन उधर उधर की लेकर के आना और जो है वो बहस मुबाहसा करने की कोशिश करना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो काउंटर बहस तो नहीं करते थे, ठीक है ना। ये तो वो उस वाले शेर वाली हरकत है कि गधे ने बहस शुरू कर दी कि तो शेर ने भी बहस शुरू कर दी। नबी सल्लल्लाहु के तो आला अखलाक वाले थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो ऐसा काम नहीं किया कि वो बहस करें तो वो भी बहस करें, लेकिन वो फिर भी लगे रहते थे फजूल में बहस करने की कोशिश करना। तो ये उनके अखलाक की हालत थी, इस तौर पर कि ये लोग जो तो काफिर हैं यूं कहते हैं कि ये कुरान तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ बेसनद बातें हैं जो पिछले लोगों से मनकूल चली आ रही हैं, यानी मजहब वाले पहले से ऐसी बातें करते चले आए हैं कि माबूद एक ही है, और ये कि इंसान खुदा का पैगंबर हो सकता है और कयामत में फिर जिंदा होना है, जिसका हासिल हासिल इनाद और तकजीब है। ठीक है, वही के तो अब पहले भी बात हुई अभी तर्जुमे के दौरान भी कि हम भी मोर और लेस ऐसे ही वाला एटीट्यूड, मुझे तो अच्छी तरह याद भी है, बल्कि पाकिस्तानियों का तो और इंडियंस का तो फिर जो है ना दीन का हाल थोड़ा बेहतर है। ठीक है, लेकिन जैसे सेंट्रल यूरोप या ईस्टर्न यूरोप के अंदर जो मुसलमान मुआशरे थे, ठीक है, बॉस्निया, अल्बेनिया, कोसोवो, राइट, और भी और इलाके हैं इनका हमें पता भी नहीं है, नाम भी याद नहीं है, तो वहां पर तो दीन इतना खत्म हो गया कि कलमा पढ़ना तो दूर की बात, उन लोगों ने यानी सब कुछ ही जो है ना वो वेस्टर्न यूरोप का तरीका इस्तेमाल शुरू कर दिया। ठीक है, बस मस्जिदें खड़ी हुई हैं बड़ी खूबसूरत खूबसूरत, जो सल्तनत उस्मानिया ने प्यारी प्यारी मस्जिदें बना दी थी उनके इलाकों में, अल्बेनिया, बॉस्निया, कोसोवो वगैरह के अंदर, लेकिन उनके अलावा कोई कुछ नहीं दीन का। तो बहरहाल जब उनको खूब पिटाई लगी तो काफिरों ने भी सबसे पहले उनकी मस्जिदों को ही गिराया। ठीक है ना, उन मस्जिदों को जिन मस्जिदों के अंदर आबादी कोई नहीं होती थी, इबादत कोई नहीं होती थी, मस्जिदें बड़ी प्यारी थी। तो जब ये किसी टाउन के ऊपर अटैक करते थे ना सर्ब्स और क्रोएट्स, तो मोर्टर जो तोपे फेंकते थे ना, गोले फेंकते थे, वो सबसे पहले इलाके की मस्जिद को निशाना बनाते और उसके मीनार को गिराते थे, है ना। ये देखें बुग़्ज़ और अदावत, और अल्लाह ताला भी कैसे दिखाते हैं कि देखो तुमने मेरी इबादत गाहों को तुमने कैसे जो है वो समझा कि बस इनका वजूद ही हमारे लिए काफी है, इनमें हमारे होने की कोई जरूरत नहीं है, तो सबसे पहले तो मैं इसी को गिराऊंगा, क्योंकि ये इबादत गाहें ये तुम्हारे और मेरे दरमियान अब रुकावट बन गई, क्योंकि तुम समझना शुरू हो गए थे कि बस यही काफी है, हमें एक दीन पे चलने की कोई जरूरत नहीं, ये रुकावट बन गई ना अब तुम्हारे और मेरे दरमियान, सबसे पहले मैं अपने काफिर बंदों से इन्हीं को गिरवाऊंगा। और फिर दूसरा काम पता है वो क्या करते थे, जब वो किसी इलाके के ऊपर फिर अपनी फौजें भेज देते थे ना, दूसरा काम वो ये करते थे कि उसी मस्जिद का जो एक इमाम होता था ना, इमाम मस्जिद, उसको मारते थे जाकर, उसको कत्ल कर देते, और फिर उसके बाद बाकी लोगों से निपटते थे, औरतों की आबरूरेजी करते थे और मर्दों को जो है वो मार देते थे या जो है वो कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स के अंदर बंद कर देते थे। तो ये तो हशर अल्लाह ताला हमारी निगाहों के सामने दिखाते रहे। तो उनमें से जो हमने जो है वो फिर जब अमरीका में थे तो उनके बच्चों को इकट्ठा इकट्ठा करके जो है ना वो मैं कुरान पढ़ाना शुरू किया कि अल्लाह के बंदो मुसलमान बहरा कहते तो हो ना अपने आप को, तो बच्चों को भेजो हम पढ़ाएंगे तुम्हारे बच्चों को कुरान। ठीक है, तो आज उसी तरीके से जो उनके बच्चों को पढ़ा रहा था, तो एक दिन जो है ना वो उनका कोई इसी किस्म का आ गया जो कि नामी का मुसलमान था, बाकी उसको कोई शायद पता नहीं अपने बच्चों को भी नहीं भेजता था, वो तो आ गया। तो मैंने जो है ना वो जो बेसमेंट के अंदर एक छोटा सा मदरसा बनाया हुआ था नाजरा, वो नूरानी कायदा पढ़ाते थे उसके अंदर, तो हमने उसकी दीवारों के ऊपर जो है ना वो मैप्स लगाए हुए थे, ये इस्लामिक दुनिया का मैप है। ठीक है ना, तो उसमें ग्रीन कलर में मुस्लिम कंट्रीज दिखाए जाते थे और फलाने कलर में जो है वो नॉन मुस्लिम कंट्रीज, और फिर वो शेड्स होते हैं कि यहाँ पे इतनी कॉन्सेंट्रेशन है मुसलमानों की तो ये डार्क ग्रीन है, यहाँ पे इतनी कॉन्सेंट्रेशन है तो ये लाइट ग्रीन है। वो आ गया और मुझे कहता है ब्रदर काशिफ कम हियर, ठीक है, और मुझे उधर वहां पे बुला कर कहते हैं कि देखो लुक एट दिस, ये जो है ना ये मुस्लिम कंट्रीज जो है वो देखो कहाँ पर है ये, है तो देखो सारी ताकतें जो है ना वो तो सारी की सारी है नॉन मुस्लिम्स के पास, ठीक है, और सारा जो है ना वो तो है ये अमेरिका, यूरोप और इनके पास और रशिया के पास, तो हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, तो भाई हम जो है वो किन कामों में लगे हुए, तुम क्या कर रहे हो हमारे बच्चों के साथ, क्या उनको करवा रहे हो, ठीक है, तो भाई कामयाबी तो इधर है, कामयाबी जो है वो ये तो नहीं है कि मौलवी की तरह बैठ करके जाए वो अल्लाह अल्लाह और कुरान पढ़ाना शुरू कर दो, कामयाबी तो उसके अंदर है, इन चीज़ों के अंदर है। तो भाई हम अमेरिका आए हैं अब पिट पिटा करके वहां से, अब जो है वो रेफ्यूजीज बन करके उन्होंने भी खूब लिया, हजारों की तादाद में बॉस्नियंस को अपने अमरीका में सेटल किया ताकि और जो है वो अमरीका का फायदा हो और दीन से बिल्कुल ही दूरी रहे हमेशा, ये ठीक है ना, कोई 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 खैरख्वाही भी थोड़ी होती है इनको, जो उन्होंने हजारों बॉस्नियंस और अल्बेनियंस को जो है वो अमेरिका में उन्होंने एब्जॉर्ब किया है, वो खैरख्वाही के लिए किया है कि उनकी जान बच जाएगी और वो अच्छी जिंदगी गुजारना शुरू करेंगे, नहीं, उनका अपना फैक्ट्री वर्कर्स चाहिए हैं उनको, सड़कों पे काम करने वाले, ट्रक चलाने वाले और होटलों के जो है वो बिस्तर ठीक करने वाले, उनके पास लोग नहीं हैं, तो वो लेते हैं जहाँ से भी उनको मौका मिलता है लेते हैं। और उनको पता है उनके जो ईसाई को उनके असल में हुकूमत चलाने वाले लोग, उनको पता है कि ये मुसलमान इधर आएंगे तो थोड़े दिन में इन्होंने भी ईसाई बन जाना है, या अगर ईसाई नहीं भी बनना तो कम अज़ कम अपने इस्लाम से तो हमेशा हमेशा के लिए दूर ही हो जाना, ठीक है। तो अब वो बंदा जो है मुझसे ऐसी बातें कर रहा है बैठ करके, ठीक है। तो मैंने वही, मुझे अभी तक याद रहता है कि देखो हम लोगों का यही नज़रिया है ना कि भी कामयाबी तो इसी के अंदर है, टेक्नोलॉजी साइंस और जो है वो दुनियावी तालीम के अंदर, और भाई जो जरूरत है वो जरूरत है, लेकिन वो मकसद तो नहीं है ना, कामयाबी तो उसके अंदर नहीं है। तो दूसरों को भी रोकते हैं, वही फरमाया कि ये जो ऐसी बातें करते हैं ये तो बस ऐसी ही, बस तुम जो, तुम मौलवी लोग जो ये बातें कर रहे हो ना, ये तो बस असातिर अव्वलीन है, पहले लोग भी ऐसे करते थे, फायदा कुछ ना हुआ हमें, ठीक है ना, हम जो है वो दुनिया में सबसे ज्यादा जो है वो पिसे हुए रह गए। आज इंडिया में सो देख लें, इंडिया में सारे के सारे लगे हुए हैं जो इस किस्म की जहनियत वाले लोग हैं कि मुसलमान इंडिया के अंदर बड़े मफलूकुल हाल हैं, और जो है ना इंडिया के अंदर मुसलमानों के पास जॉब्स नहीं हैं और तालीम नहीं है और टेक्नोलॉजी नहीं है, तो हमें तालीम और कौन सी वाली तालीम, वही वाली तालीम सारी की सारी ना, हमें टेक्नोलॉजी की जरूरत है, हमें मुसलमानों को पढ़ाने की जरूरत है, और हमें जो है वो कमाने की जरूरत है, और ये करने की जरूरत है, वो करने की जरूरत है, ठीक है ना। अंधों को ये नजर नहीं आता, इन अंधों को ये नजर नहीं आता कि इन इंडिया के अंदर भी, इंडिया के अंदर वैसे मुसलमान कितनी बड़ी तादाद के अंदर हैं कि जिनके पास किलोग्रामों के हिसाब से सोना है, और इतना सोना है, इतना सोना है कि जिसकी कोई इंतहा नहीं, राइट। और इनकी जो शादियां होती हैं उनके अंदर ये करोड़ों नहीं अरबों खर्च करते हैं मुसलमान इंडिया के, ठीक है। और मुसलमान इंडिया के ऐसे ऐसे जो है वो साइंसदान और ऐसे ऐसे जो है वो आईटी के अंदर है कि पूरी दुनिया के अंदर जहां हिंदू छाए मौजूद हैं वहीं पे मुसलमान भी मौजूद हैं, इंडियन मुस्लिम्स ऐसी ऐसी साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर जो है वो तरक्की करके ऐसे ऐसे बड़े बड़े जो है मुकामात के ऊपर बैठे हुए हैं, ठीक है। तो इसी को समझ रहे हैं कि जी जो जो गरीब और वो मफलूकुल हाल जो बैठे हुए हैं, तो उनको भी हम इसी तरीके से पढ़ा देंगे तो सारा का सारा मसला हल हो जाएगा, राइट। और अल्लाह रसूल की कोई बात करे, गुनाहों से तौबा की कोई बात करे, तो असातिरुल अव्वलीन है ये, इनसे कोई थोड़ी फायदा होता है, हमारा दीन को थोड़ी मना करता है जो है वो दुनियावी इल्म हासिल करने से और जो है वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी, हमारा दीन को थोड़ी मना करता है। हाँ वो उससे तो मना नहीं करता, लेकिन जो तुम हराम खोरियां करते हो उससे भी मना नहीं करता क्या, राइट। हमारा दीन उससे भी मना नहीं करता, तो जिससे करता है तो उसको तो सुनो ना कम से कम, जिससे नहीं करता तो उसके ऊपर फिर उसके बाद अमल करना, ठीक है। लेकिन नहीं, वही मुश्रिकीन वाली बात, काला असातिरुल इन हादा इल्ला असातिरुल अवलीन वहुम यनहौना अनहु वा यनहौना अन, ये फरमाते हैं कि जी ये जिसका हासिल इनाद और तकजीब है, आगे इससे तरक्की करके जिदाल और दूसरों को भी हिदायत से रोकने का काम शुरू किया, और फिर ये लोग इस कुरान से औरों को भी रोकते हैं और खुद भी उससे नफरत जाहिर करने के लिए दूर दूर रहते हैं, ठीक है। पाकिस्तानी मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह दीनदार बन गया है, तो वो दूसरों को तो अब नहीं रोकता, सवाए जो है वो लिबरल्स और एथियस्ट लोगों के, और कोई किसी को रोकता नहीं है, लेकिन खुद तो दूर रहते हैं, ठीक है। तो मुश्रिकीन की आधी सिफत अल्हम्दुलिल्लाह नहीं है हमारे अंदर, लेकिन बाकी आधी सिफत तो हमारे अंदर है, दूर दूर रहने वाली, ठीक है। या ये कि रोकने का जो है ना वो दूसरे अंदाज से रोकते हैं, वो ऐसे नहीं रोकते कुरान से नहीं रोकते, वो रोकते हैं कुरान के दर्स देने वालों से रोकते हैं, ये लोग ठीक नहीं है, ठीक है। तो उनको भी ये बात पता है, या शैतान ने उनको ये बात समझाई भी है कि जब तुम कुरान का दर्स देने वाले अहले हक से रोक दोगे तो ऑटोमेटिकली बंदा जो है वो कुरान की सही समझ से भी रुक जाएगा, ठीक है। अब जो है ना वो दूसरे तमाशे शुरू किए हैं, दूसरे तमाशे क्या शुरू किए हैं, स्कूलों कॉलेजों के अंदर जो है ना वो कुरान का तर्जुमा पढ़ाया जाएगा, कौन पढ़ाएगा भाई, क्या पढ़ाने वाले लोग आपके पास हैं जो कि कुरान मजीद की सही तफहीम को खुद भी समझें और आगे पढ़ा भी सकें उन स्कूलों कॉलेजों के बच्चों को, जिनको कि आपने पहले ही जो है वो बचपन से कुफर का दिल दादा बना दिया है, अब उनको यूनिवर्सिटी में आकर कुरान मजीद का तर्जुमा पढ़ा रहे हैं, राइट? और कौन पढ़ा रहा है, कैसे पढ़ा रहा है? लेकिन या तो वोट लेने के लिए या वही लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए यूनिवर्सिटियों में जो कुरान शरीफ पढ़ाया जाएगा, और बाकी काम वो खुद ही कर लेगा ना, कुरान जो है वो तो अपना रास्ता खुद ही बना लेता है। युदुल्लु भी कसीरों व यहदी भी कसीरा, किधर चला गया फिर? ठीक है ना, फिर तो वही होगा पीछे जो हमने आयत पढ़ी थी कल के, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया ना, देखें पीछे क्या पढ़ा था अभी कल की क्लास के अंदर। हाँ था वो, जिसकी तफसीर में वो वाली हदीस भी पड़ी थी कि जिस शख्स को कुरान पहुंच गया वो ऐसा हो गया जैसे उसने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत कर ली, और एक हदीस में है कि जिस शख्स को कुरान पहुंच गया मैं उसका नज़ीर हूँ। तो अब स्कूलों कॉलेजों के जिनके दिमाग में सारी खराफात 12-13 साल तक भर दी गई हैं, अब वो यूनिवर्सिटी में आकर ये कुरान मजीद का तर्जुमा पढ़ रहे हैं, तो उन्होंने तो ये समझ लिया कि हाँ भी कुरान मजीद का तर्जुमा पढ़ लिया, इसका मतलब है कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस्तादी में आ गए। ठीक है, अब जो है वो सही क्या है गलत क्या है, इसके अंदर सही इसकी तफसीर नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत से और सीरत से क्या चीज़ साबित होती है, उसकी क्या ज़रूरत है, जो मुझे समझ में आ रहा है बस वही ठीक है। ठीक है, तो भाई कुरान मजीद का तर्जुमा पढ़ा देना जो है ना, इसमें भी तफसील है, तो देखना चाहिए कि कौन इस किस्म की हरकतें कर रहा है। ठीक है ना, पहले तो चंद दिन पहले कोई इस किस्म की हरकत करता था तो बहुत बुरा बुरा था, अब जो है वो इस किस्म की हरकत करें तो बड़े अच्छे हो गए वो एकदम से। ठीक है, कौन सा उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्या तफरक है दोनों दोनों के दरमियान, शिया कादियानी उस्ताज़ होंगे, उलमा से दूर होंगे मजीद, हक से दूर होंगे मजीद, वरना दूसरे टाइप के उलमा की तादाद भी बड़ी बढ़ती चली जा रही है, वो मिल जाएंगे उनको पढ़ाने के लिए मदरसों स्कूलों कॉलेजों के अंदर, क्योंकि तो पहले ही जो है ना वो मरऊब है, जो पहले ही दुनिया से मरऊब है मौलवी लोगों की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है ना, शिया और कादियानी की जरूरत नहीं है अब। ठीक है ना, अब इतने शिया नहीं मिलेंगे कि हर यूनिवर्सिटी में शिया उस्ताद हो, हर यूनिवर्सिटी में कादियानी उस्ताद हो, अब जो है ना वो आपको अपनों में से मिलेंगे। ठीक है, लेकिन वो होंगे क्या, वो मरऊब होंगे। ठीक है, और वो ऐसे बात करेंगे कि जिसकी वजह से जो है ना वो कंफ्यूजन बढ़ती ही चली जाएगी। और तो बहरहाल, तो बात करके फिर आज की क्लास में खत्म भी करनी है, तो फरमाते हैं कि ये लोग इस कुरान से औरों को भी रोकते हैं और खुद भी इससे नफरत जाहिर करने के लिए दूर दूर रहते हैं, हरकत में लोग अपने ही को दबा कर रहे हैं, और हिमाकत और गायत बोध से कुछ खबर नहीं रखते कि हम किसका नुकसान कर रहे हैं, हमारे इस फेल से रसूल और कुरान का तो इससे कुछ नहीं बिगड़ता, हम अपना ही नुकसान कर रहे हैं इस हरकतें करके, हम मर जाएंगे तो फिर सारी चीज़ हमारे सामने खुल जाएंगी, क्योंकि उस वक्त जो है ना फिर हमारी सारी रूहानी ईयर साइड जो है, आई साइड जो है वो 6x6 हो जाएगी, अभी तो नजर नहीं आ रहा ना कुछ भी, कम क्या करते फिर रहे। अल्लाह ताला हमें सच्ची पक्की तौबा की तौफीक नसीब फरमाए, अल्लाह ताला ने इस रमजान मुबारक में, इस बाबरकत महीने के अंदर जो हमें अपने कुरान मजीद के साथ वक्त गुजारने की तौफीक अता फरमाए, इसको हमारे हम सब के हक में हुज्जत बनाए, इसमें से सुनी हुई और पढ़ी हुई किसी भी बात को हमारे खिलाफ हुज्जत ना बनाए कि मैंने तो तुम तक ये इल्म पहुंचा दिया था फिर भी तुमने इसको क्यों नहीं समझा, फिर भी तुमने उसके ऊपर अमल नहीं किया। अल्लाह हम उस अंजाम से आपकी पनाह मांगते हैं, हम आपकी मदद के मोहताज हैं, आपकी रहमत के मोहताज हैं, आपकी मग़फ़िरत के मोहताज हैं। ऐ अल्लाह, ये बाबरकत महीना ख़त्म होने पर आया है, ऐ अल्लाह इस बरकत वाले महीने के अंदर हमने जो भी नाकदरियाँ करी, जो भी गलतियाँ कोताहियाँ हमसे हुई हैं, ऐ अल्लाह हम आपसे उनकी माफ़ी मांगते हैं इस भरपूर उम्मीद के साथ और इस यकीन के साथ कि अल्लाहुम्मा इन्नका अफूवन करीमुन तुहिब्बुल अफ्व, कि आप माफ़ी को पसंद करते हैं, फाफू अन्ना या करीम, ऐ अल्लाह हमें माफ़ फरमा दीजिए, ऐ अल्लाह हमारा कोई अमल इस काबिल नहीं है कि जिसके ऊपर हमें कबूलियत की उम्मीद हो, हमें अपने अमलों से ज़र्रा बराबर भी उम्मीद नहीं, ऐ अल्लाह हम तो ऐसे हैं कि हम अगर किसी दुनिया वाले के सामने भी जा करके इम्तिहानी पर्चा लिख करके आते हैं ना, तो इतना गंदा उसमें लिख करके आते हैं कि बस उसकी मेहरबानी ही की उम्मीद होती है कि वही हमें पास कर देगा तो शायद हम पास हो जाए। ए अल्लाह, आप तो ऐसे मुमतहिन हैं, आप तो ऐसे जो है वो देखने वाले हैं कि जिनके सामने हर चीज खुली हुई है, हर चीज की हकीकत खुली हुई है, हमारी नीयतों की हकीकत खुली हुई है, हमारे गुनाहों की हकीकत खुली हुई है, हमारी बेतवज्जुही और बेतलबी की हकीकत खुली हुई है। ऐ अल्लाह, इन सारी कैफियत के साथ, इन मनफी कैफियत के साथ जो हमने अमल किए भी हैं, ऐ अल्लाह सच्ची बात यह है कि उनमें से एक अमल भी कबूल किए जाने के और उसके बदले में जन्नत की उन नेमतों का के हुसूल की, ऐ अल्लाह कोई भी हमारा अमल इस काबिल नहीं है। ऐ अल्लाह अपने आमाल की, ऐ अल्लाह अपनी इबादतों की, ऐ अल्लाह अपनी तिलावतों की, हम कामिल तौर पर नफी करते हुए सिर्फ और सिर्फ आपकी रहमत से ये उम्मीद रखते हैं कि ऐ अल्लाह आप जो है वो हमारी गलतियों को, कोताहियों को माफ फरमा देंगे और हमारे इन टूटे फूटे गंदे संदे अमलों को ही अपनी रहमत में लपेट करके अपनी जन्नत का मुस्तहिक बना देंगे। और ए अल्लाह, आप हमें अपनी जन्नत और फिरदौस के अंदर दाखिला अता फरमा देंगे। ए अल्लाह, हम आपसे बेहतरीन गुमान रखते हैं, आपसे रहमत की उम्मीद रखते हैं। ए अल्लाह, हमारी उम्मीदों को आप हमारे गुनाहों की वजह से ठुकरा मत दीजिएगा। ए अल्लाह, आप हमें मायूस मत कर दीजिएगा। ए अल्लाह, हमारे ऊपर रहम फरमा करके हमें भी और हमारे तमाम अहले खाना को भी, और ए अल्लाह हमारे आने वाली नस्लों को भी, और ए अल्लाह हमारे बड़ों को भी और हमारे छोटों को भी, हमारे साथ वालों को भी, ए अल्लाह आप कबूल फरमा लीजिएगा। ए अल्लाह, आप अपनी जन्नत और फिरदौस में दाखिला अता फरमा दीजिएगा। ए अल्लाह, अपने जहन्नम से हम सबको इत्को मिनन नार का मिस्ताक बनाते हुए आज़ाद फरमा दीजिएगा। ए अल्लाह, आप ही ने हमें दुआ मांगने भी की तौफीक अता फरमाई। ए अल्लाह, आप ही हमारी दुआओं को कबूल करने वाले हैं। ए अल्लाह, हमारा अपने साथ बेहतरीन गुमान बनाए रखिए और ए अल्लाह इसी गुमान के साथ हमें इस सारी जिंदगी को गुजार देने और आपके साथ फिर दोस्ताना माहौल के अंदर मुलाकात करने की तौफीक अता फरमा दीजिए। ए अल्लाह, आगे भी अगर आपने हमारी जिंदगी को बरकरार रखना है तो ए अल्लाह हमारे आने वाली जिंदगी को हमारी गुजरी हुई जिंदगी से बेहतर बना दीजिए। ए अल्लाह, कुरान वाली जिंदगी बना दीजिए। ए अल्लाह, अपनी रजा वाली जिंदगी बना दीजिए। ए अल्लाह, अपने दीन की फिक्र करने वाली जिंदगी बना दीजिए। ए अल्लाह, आखिरत की फिक्र में हमारी बाकी मानदा जिंदगी को गुजारने की हमें तौफीक अता फरमा दीजिए। ए अल्लाह, जो मांगना चाहिए था वो भी अता फरमा दीजिए, जो नहीं मांग सके, जो मांगना चाहिए था, ए अल्लाह अपने गैबी खजानों से हमें वो भी अता फरमा दीजिए। ए अल्लाह, हमारी तमाम दुआओं को अपनी रहमत से कबूल फरमा दीजिए। हमारी तरफ से हमारे बुजुर्गों को, खुसूसन हमारे वालिदैन को अजर अजीम अता फरमा दीजिए, हमारे मशायख को अजर अजीम अता फरमा दीजिए, हमारे असातिज़ाए कराम को अजर अजीम अता फरमा दीजिए, हमें उनके लिए सदका जारिया बना दीजिए और हमारे छोटों को हमारे लिए सदका जारिया बना दीजिए। اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم آمين ثم آمين. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Recording stopped.